यद्यपि गांव वालों ने गौस खां पर जरा भी आँच ना आने दी थी, लेकिन ज्वाला सिंह का उनके बर्ताव के विषय में पूछताछ करना उनके शांति हरण के लिए काफी था। चपरासी नाजिर मुंशी सभी चकित हो रहे थे कि इस अखड़ लौंडे ने डिप्टी साहब पर न जाने क्या जादू कर दिया कि उनकी काया ही पलट गई। ईंधन, पुआल, हांडी, बर्तन, दूध, दही, मांस, मछली, साग भाजी, सभी चीजें बेगार में लेने को मना करते हैं। तब तो हमारा गुजर हो चुका, ऐसा भत्ता ही कौन बहुत मिलता है। यह लौंडा एक ही पाजी निकला, एक तो हमें फटकार सुनाई, उस पर यह और रद्दा जमा गया। चलकर डिप्टी साहब से सब माजरा कह देना चाहिए। आज यह दुर्दशा हुई, दूसरे गांव में इससे भी बुरा हाल होगा, हम लोग पानी को तरस जाएंगे। अतः ज्वाला सिंह लौट कर आए, सबके सब उनके सामने जाकर खड़े हो गए। इजाद हुसैन को फिर उनका मुखपत्र बनना पड़ा। ज्वाला सिंह ने दुष्ट भाव से कहा, कहिए आप लोग कैसे चले, कुछ कहना चाहते हैं? वीर साहब, आपने लोगों को मेरा हुक्म सुना दिया है न? इजाद हुसैन, जी हाँ, यही हुक्म सुनकर तो यह लोग घबराए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। कल इस गांव में एक सख्त वारदात हो गई। गांव के लोग चपरासियों से लड़ने पर आमादा हो गए। ये लोग जान बचाकर चले आए होते तो फौजदारी हो जाती। इन लोगों ने इसकी इत्तला करके हुजूर के आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज की मुमानियत सुनकर इनके होश उड़ गए। पहले ही बिगाड़ आसानी से न मिलती थी, अब जो लोग इस हुक्म की खबर पाएंगे सो और भी शेर हो जाएंगे। कल जो हंगामा हुआ उसका बानी मवानी वही नौजवान था जो सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था, उसकी कुछ तंबीह होने निहायत जरूरी है। ज्वाला सिंह, उसकी बातों से तो मालूम होता था कि चपरासियों ने उसके साथ सख्ती की थी। एक चपरासी, वह तो कहेगा ही, लेकिन खुदा गवाह है हम लोग भाग न आए होते तो जान की खैर न थी। ऐसी जिल्लत आज तक कभी नहीं हुई थी। हम लोग चार चार पैसे के मुलाजिम हैं, पर हाकिमों के इकबाल से बड़े बड़ों की कोई हकीकत नहीं समझते। गौस खां, हुजूर व लौंडा इंतहा दर्जे का शरीर है, उसके मारे हम लोगों का गांव में रहना दुश्वार हो गया है, रोज एक न एक तूफान खड़ा किया रहता है। दूसरा चपरासी, हुजूर ही लोगों की गुलामी में उम्र कटी, लेकिन कभी ऐसी दुर्गति न हुई थी। इजाद हुसैन, हुजूर की रियाया परवरी में कोई शक नहीं, वो काम को रहम दिल होना ही चाहिए, लेकिन हक तो यह है कि बेगार बंद हो जाए तो इन टके के आदमियों का किसी तरह गुजर न हो सके। ज्वाला सिंह, नहीं, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, मेरी मंशा सिर्फ यह है कि रियाया पर भेजा सख्ती न हो। मैंने इन लोगों को जो हुक्म दिया है उसमें उनकी ज़रूरतों का काफ़ी लिहाज रखा है। मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि सदर में यह लोग जिन चीज़ों के बगैर गुजर कर सकते हैं उनकी देहात में आकर क्यों ज़रूरत पड़ती है। चपरासी, हुजूर हम लोगों को जैसे चाहे रखें, आपको गुलाम है, पर इसमें हुजूर की बेरोबी होती है। गौस खां, जी हाँ, यह देहाती लोग उसे हाकिम ही नहीं समझते जो उनके साथ नरमी से पेश आए। हुजूर को हिंदुस्तानी समझ कर ही यह लोग ऐसी दिलेरी करते हैं। अंग्रेज जो काम आते हैं तो कोई चूँ भी नहीं करता। अभी दो हफ्ते होते हैं, पादरी साहब तशरीफ लाए थे और हफ्ते भर रहे, लेकिन सारा गांव हाथ बांधे खड़ा रहता था। इजाद हुसैन, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, हिंदुस्तानी हुक्काम को यह लोग हाकिम ही नहीं समझते जब तक वह इनके साथ सख्ती न करें। ज्वाला सिंह ने अपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए अंग्रेजी रहन सहन ग्रहण किया था, वह अपने को किसी अंग्रेज से कम न समझते थे। अंग्रेजों से मिलने जाते तो टोपी हाथ में लेते, जूते उतारने के अपमान से बच जाते, रेलगाड़ी में अंग्रेजों के ही साथ बैठते थे, लोग अपने बोलचाल में उन्हें साहब ही कहा करते थे। हिंदुस्तानी समझना उन्हें गाली देना था। गौस का इजाद हुसैन की बातें निशाने पर बैठ गई, अकड़ कर बोले, अच्छा यह बात है तो मैं भी दिखा देता हूँ कि मैं किसी अंग्रेज से कम नहीं हूँ, या लोग भी क्या समझेंगे कि किसी हिंदुस्तानी हाकिम से काम पड़ा था। अब तक तो मैं यही समझता था कि सारी खता हम ही लोगों की है, अब मालूम हुआ कि यह देहातियों की शरारत है। अलहमद साहब, आप हल्के सब इंस्पेक्टर को रूपकार लिखिए, वह फौरन मामले की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करें। चपरासी, ज़्यादा नहीं तो हुजूर इन लोगों से मुश्किला तो जरूर ही ले लीजिया जाए। गौस खां, इस लौंडे की गोशमाली जरूरी है। ज्वाला सिंह, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए मैं कुछ नहीं करना चाहता। परिणाम यह हुआ कि संध्या समय बाबू दयाशंकर को जब फिर बेहाल होकर इसी हल्के में नियुक्त हुए थे, लखनपुरा पहुंचे। कई कांस्टेबल भी साथ थे, उन लोगों ने चौपाल में आसन जमाए, गांव के सब आदमी जमा किए गए, मगर बलराज का पता ना था। वह और रंगी दोनों नील गायों को भगाने गए थे। दरोगा ने बिगड़ कर मनोहर से कहा, तेरा बेटा कहाँ है? सारे फिसाद की जड़ तो वही है, तूने कहीं भगा तो नहीं दिया? उसे जल्दी हाजिर कर, नहीं तो मैं वारंट जारी कर दूंगा। मनोहर ने अभी उत्तर न दिया कि किसी ने कहा, वह बल्लाज आ गया। सबकी आंखें उसकी ओर उठी। दो कांस्टेबलों ने लपक कर उसे पकड़ लिया और दूसरे दो कांस्टेबलों ने उसकी मुश्कें कसनी चाहीं। बल्लाज ने तीन भाव से मनोहर की ओर देखा। उसकी आंखों में भयंकर संकल्प तिलमिला रहा था। वह कह रही थी कि यह अपमान मुझे से नहीं सहा जा सकता, मैं अब जान पर खेलता हूँ। आप क्या कहते हैं? मनोहर ने बेटे की यह दशा देखी तो रक्त खौल उठा, बावला सा हो गया। कुछ न सूझा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाज की तरह टूट कर बल्लाज के पास पहुंचा और दोनों कांस्टेबलों को धक्का देकर बोला, छोड़ दो, नहीं तो अच्छा न होगा। इतना कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई और आंखों में आंसू आ गए। सुक्कू चौधरी मन में फूले न समाते थे। उन्हें वह दिन निकट दिखाई दे रहा था जब मनोहर के दसों बीघे खेत पर उनके हल चले गए। दुखरन भगत कांप रहे थे कि मालूम नहीं क्या आफत आएगी। डपट सिंह सोच रहे थे कि भगवान मारे मारपीट हो जाए तो इन लोगों के खूब कुंदी की जाए। और विशेषर शाह थर थर कांप रहे थे। केवल कादिर खां को मनोहर से सच्ची सहानुभूति थी। मनोहर की उद्दंडता से उसके हृदय पर एक चोट सी लगी। सोचा, मारपीट तो हो गई तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। तुरंत जाकर दयाशंकर के कान में कहा, हुजूर हमारे मालिक हैं, हम लोग आप ही की रियाया हैं, सिपाहियों को मने कर दे, नहीं तो खून हो जाएगा। आप जो हुक्म देंगे उनके लिए मैं हाजिर हूँ। दयाशंकर उन आदमियों में न थे जो खोकर भी कुछ नहीं सीखते। उन्हें अपने अभियोग ने एक बड़ी उपकारी शिक्षा दी थी। पहले वह यथासंभव रिश्वत अकेले ही हजम कर लिया करते थे। इससे थाने के अन्य अधिकारी उनसे द्वेष किया करते थे। अब उन्होंने बांट कर खाना सीखा था। इससे सारा थाना उन पर जान देता था। इसके अतिरिक्त अब वह पहले की भांति अश्लील शब्दों का व्यवहार न करते थे। उन्हें अब अनुभव हो रहा था कि सज्जनता केवल नैतिक महत्व की वस्तु नहीं है, उसका आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। सारांश यह है कि अब उनके स्वभाव में अनर्गलता की जगह गंभीरता का समावेश हो गया था। वह इस झमेले में सारे गांव को समेट कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। कांस्टेबलों का अत्याचार इस उद्देश्य में बाधक हो सकता था, अतः उन्होंने सिपाहियों को शांत किया और बयान लिखने लगे। पहले चपरासियों को बयान हुए, उन्होंने अपना सारा क्रोध बल्लाज पर उतारा। गौस का और उनके दोनों शाहनों ने भी इसी से मिलता जुलता बयान दिया। केवल बिंदा महाराज का बयान कुछ कमजोर था। अब गांव वालों के इजहार की बारी आई। पहले तो इन लोगों ने समझा था कि सारे गांव पर आफत आने वाली है, लेकिन विपक्षियों के बयान से विदित हुआ कि सब उद्योग बल्लाज को फंसाने के लिए किए जा रहे हैं। बल्लाज पर उसकी सहृदयता के कारण समस्त गांव जान देता था। पारस्परिक स्नेह और सहृदयता ही ग्राम्य जीवन का एक शुभ लक्षण है। उस अवसर पर केवल सच्ची बात कहने से बल्लाज की जान बच सकती थी। अपनी ओर से कुछ घटाने बढ़ाने की जरूरत न थी। अतः लोगों ने साहस से काम लिया और सारी घटना सच सच कह सुनाई। केवल बल्लाज के कठोर शब्दों पर पर्दा डाल दिया। विपक्षियों ने उन्हें फोड़ने में कोई बात न उठा रखी, पर कादिर खां की दृढ़ता ने किसी को विचलित न होने दिया। 8 बजते बजते तहकीकात समाप्त हो गई। बल्लाज को हिरासत में लेने के लिए प्रमाण न मिले। गौस खां दांत पीस कर रह गए। दरोगा जी चौपाल से उठकर अंदर के कमरे में जा बैठे। गांव के लोग एक एक करके सरकने लगे। टपट सिंह ने अकड़ कर कहा, गांव में फूट न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दरोगा जी कैसी जीरा करते थे कि कोई फूट जाए। दुखरन, भगवान चाहेंगे तो अब कुछ न होगा, मेल बड़ी चीज है। मनोहर, भाई तुम लोगों ने मेरी आबरू रख ली, नहीं तो कुशल नहीं थी। डपट सिंह, लश्कर वालों ने समझा था जैसे दूसरे गांव वालों को दबा लेते हैं वैसे ही इन लोगों को दबा लेंगे। दुखरन, इस गांव पर महावीर स्वामी का साया है, इसे क्या खाकर दबाएगा। मनोहर, कादिर भैया, जब दोनों कांस्टेबलों ने बालू का हाथ पकड़ा तो मेरे बदन में जैसे आग लग गई। अगर वह छोड़ न देते तो मैं चाहे जान से जाता, पर एक की तो जान ही लेकर छोड़ता। डपट, असलत तो यह कि बल्लाज से इतना जब्त कैसे हो। बल्लाज, मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी भूल गई थी, मालूम होता था हाथों में दम ही नहीं। हाँ, जब वह सब दादा से हाथापाई करने लगे तब मुझमें जब्त न हो सका। दुखरन, चलो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही हुआ, अब कोई चिंता नहीं। यह बातें करते हुए लोग अपने अपने घरों में गए। मनोहर अभी भोजन करके चिलम पी रहा था कि बिंदा महाराज आकर बैठ गए। यह बड़ा सहृदय मनुष्य था तो जमींदार का नौकर, पर उसकी सहानुभूति सदैव असामियों के साथ रहती थी। मनोहर उसे देखते ही खाट पर से उठ बैठा। बिलासी घर से निकल आई और बल्लाज जो ऊँख की गड़ेरियाँ काट रहा था हाथ में गड़ासा लिया कर खड़ा हो गया। आजकल ऊँख पेरी जाती थी, पर रात रहे कोलू खड़े हो जाते थे। मनोहर ने पूछा, कहो महाराज कैसे चले, चौपाल में क्या हो रहा है। बिंदा, तुम्हारा गला रेतने की तैयारियां हो रही हैं। दरोगा जी ने गांव के मुखिया लोगों को बुलाया और सबसे अपना अपना बयान बदलने के लिए कहा है। धमका रहे हैं कि बयान न बदलोगे तो सबसे मुचलका ले लेंगे। उस पर 100 रुपये की थैली अलग मांगते हैं। डर के मारे सबकी नानी मर रही है, बयान बदलने पर तैयार हैं। मैंने सोचा चलकर तुम्हें खबर तो दे दूँ, जमींदार के चाकर हैं तो क्या, पर हैं तो हम और तुम एक। मनोहर के पांव तले से जमीन निकल गई, बिलासी सन्नाटे में आ गई, बलराज के भी होश उड़ गए। गरीबों ने समझा था, बड़ा टल गई, अपने काम धंधे में लगे हुए थे। इस समाचार ने आंधी के झोंके की तरह आकर नौका को डवाडोल कर दिया, किसी के मुंह से आवाज न निकली। बिंदा ने फिर कहा, सबों ने कैसा अच्छा बयान थे हत्या, मैंने समझा था ये अपनी बात पर अड़े रहेंगे, पर सब कायर निकले, एक ही धमकी में पानी हो गए। मनोहर, मेरे ऊपर कोई ग्रह दशा आई हुई है और क्या, इस लौंडे के पीछे देखें क्या क्या दुर्गति होती है। बिंदा, रात तो बहुत हो गई है, पर बन पड़े तो लोगों के पास जाओ, अर्ज विनती करो, कौन जाने मान जाए। बल्लाज ने तनकर कहा, न किसी भकुए के पास जाने का काम नहीं, यही न होगा मेरी सजा हो जाएगी। ऐसे कायरों से भगवान बचावे, मुशलकी के नाम से जिनके प्राण सूख जाते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। यहाँ मर्द हैं, सजा से नहीं डरते, कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं डाला, सच्ची बात के पीछे सजा नहीं, गला कट जाए तब भी डरने वाला नहीं। मनोहर, अरे बाबा चुप भी रह, आया है बड़ा मर्द बन के, जब तेरी उम्र हुई हो तो हम भी आकाश की आग पर दिया जलाते थे, पर जब वो कलेजा कहाँ से लाएं। पिंदा, इन लड़कों की बातें ऐसे ही होती हैं, पर क्या जाने माँ बाप के दिन पर क्या गुजरती है। जाओ कहो सुनो अधिकार हो, आंखें चार होने पर कुछ न कुछ मुरव्वत आ ही जाती है। बिलासी, हाँ अपनी वाली कर लो, आगे जो भाग में बदा है वह तो होगा ही। 9 बज चुके थे, प्रकृति कुहरे के सागर में डूबी हुई थी, घरों के द्वार बंद हो चुके थे, अलाव भी ठंडे पड़ गए थे, केवल सुक्कू चौधरी के कुल्हाड़े में गुड़ पक रहा था, कई आदमी भट्टे के सामने आग ताप रहे थे, गांव की गरीब स्त्रियां अपने अपने घड़े लिए गर्म रस की प्रतीक्षा कर रही थी। जितने में मनोहर आकर सुक्कू के पास बैठ गया। चौधरी अभी चौपाल से लौटे थे और अपने मेलियों से दरोगा जी की सज्जनता की प्रशंसा कर रहे थे। मनोहर को देखते ही बात बदल दी और बोले, आओ मनोहर बैठो, मैं तो आप ही तुम्हारे पास आने वाला था, कहाड़ की चाशनी देखने लगा, इन लोगों को चाशनी की परख नहीं है, कल एक पूरा ताप बिगड़ गया, दुर्गा जी तो बहुत मुंह फैला रहे थे, कहते हैं सबसे मुचलका लेंगे, पर सब की थैली अलग मांगते हैं, हाकिमों के बीच में बोलना जान जोखिम है, जरा से सुई का पहाड़ हो गया। मुचलका का नाम सुनते ही सब लोग थरथरा रहे हैं, अपने अपने बयान बदलने पर तैयार हो रहे हैं। मनोहर, तब तो बल्लू के फंसने की कोई कसर नहीं रही। सुखू, हाँ बयान बदल जाएंगे तो उसका बचना मुश्किल है, इसी मारे मैंने अपना बयान न दिया था। खान साहब बहुत दम भरोसा देते रहे, पर मैंने कहा मैं न इधर रहूंगा न उधर, न आपसे बिगाड़ करूंगा न गांव से बुरा बनूंगा। इस पर बुरा मान गए, सारा गांव समझता है कि मैं खान साहब से मिला हुआ हूं, और कोई बता दे उनसे मिलकर गांव की क्या बुराई की। हाँ उनके पास उठता बैठता हूँ, इतने से ही जब मेरा बहुत सा काम निकलता है तब व्यवहार क्यों तोड़ूं, मेल से जो काम निकलता है वह बिगाड़ करने में से नहीं निकलता, हमारा सिर जमींदार के पैरों तले रहता है, ऐसे देवता को राजी रखने में ही भलाई है। मनोहर, अब मेरे लिए कौन सी राह निकालते हो। सुखू, मैं क्या कहूँ, गांव का हाल तो जानते ही हो, तुम्हारी खातिर मुचलका देने पर कौन राजी होगा, कोई न मानेगा, बस या तो भगवान का भरोसा या अपनी गांठ का। मनोहर ने सुखू से ज़्यादा बातचीत नहीं की, समझ गया कि मुझे मुड़वाना चाहते हैं, कुछ दरोगा को देंगे, कुछ गौस खां से मिलकर आप खा जाएंगे, इन दोनों उसका हाथ बिल्कुल खाली था, नई गोई लेनी पड़ी, सब रुपए हाथ से निकल गए। खां साहब ने सिकमी खेत निकाल लिए थे, इसलिए रबी की भी आशा कम थी, केवल ऊख का भरोसा था, लेकिन विशेश्वर शाह के रुपए चुकाने थे और लगान की बेबाक करना था, गुड़ में इससे अधिक और कुछ न हो सकता था, दूसरा ऐसा कोई महाजन न था जिससे रुपये उधार लिए जा सकते। वह यहाँ से उठकर डपट सिंह के घर की ओर चला, पर अभी तो कुछ निश्चय न कर सका था कि उनसे क्या कहूँगा। वह भटके हुए पथिक की भांति एक पगडंडी पर चला जा रहा था, बिल्कुल बेखबर कि यह रास्ता मुझे कहाँ लिए जाता है, केवल इसलिए कि एक जगह खड़े रहने से चलते रहना अधिक संतोषप्रद था, क्या हानि है यदि लोग मुचलका देने पर राजी हो जाए। यह विधान इतना दुरुस्त था कि वहां तक उसका विचार भी न पहुंच सकता था। डपट सिंह के दलान में एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी, भूमि पर पुआल बिछी हुई थी और कई आदमी और लड़के एक मोटे टाट का टुकड़ा ओढ़े सिमटे पड़े थे। एक कोने में एक कुतिया बैठी हुई पिल्लों को दूध पिला रही थी, दूसरे में एक गाय खड़ी जुगाली कर रही थी। डपट सिंह अभी सोए न थे, सोच रहे थे कि सुक्खू के कुल्हाड़े में से गर्म रस आ जाए तो पीकर सोएंगे। उनके छोटे भाई डपट सिंह कुप्पी के सामने रामायण लिए आंखें गड़ा गड़ा कर पढ़ने का उद्योग कर रहे थे। मनोहर को देखकर बोले, आओ महतो, तुम तो बड़े झमेले में पड़ गए। मनोहर, अब तो तुम ही लोग बचाओ तो बच सकते हैं। डपट, तुम्हें बचाने के लिए हमने कौन सी बात उठा रखी? ऐसा बयान दिया कि बल्लाद पर कोई दाग नहीं आ सकता था, पर भाई अब मुचलका तो नहीं दे सकते। आज मुचलका दे दें, कल को गौस खान झूठों कोई सवाल दे दें तो सजा हो जाए। मनोहर, नहीं भैया, मुचलका देने को मैं आपसे नहीं कहूँगा। डपट सिंह मनोहर के सदिच्छुक थे, पर इस समय उसे प्रकट न कर सकते थे। बोले, परमात्मा बैरी को भी कपूत संतान न दे। बल्लाज ने कल झूठ मूठ बदबड़ाव कर न किया होता तो तुम्हें क्यों इस तरह लोगों की चिरौरी करनी पड़ती? हठात कादिर खां की आवाज़ यह कहते हुए सुनाई दी, बड़ा न्याय करते हो ठाकुर। बल्लाज ने झूठ मूठ बदबड़ाव किया था तो उसे घड़ी डांट क्यों नहीं दिया? तब तो तुम भी बैठे मुस्कुराते रहे और आंखों से इस तालुक देते रहे। आज जब बात बिगड़ गई है तो कहते हो झूठ मूठ बदबड़ाव किया था। पहले तुम्ही ने अपनी लकड़ी का रोना रोया था, मैंने अपनी राम कहानी कही थी। यही सब सुनकर बल्लाज भरा बैठा था, जो ही मौका मिला खुल पड़ा। हमने और तुमने रो रो कर बेगार की, पर डर के मारे मुंह न खोल सके। वह हिम्मत कर का जवान है, उससे बर्दाश्त न हो। जब वह हम सभी लोगों की खातिर आगे बढ़ा तो यह कहाँ का न्याय कि मुचलके के डर से उसे आग में झोंकते। डपट सिंह ने विस्मित होकर कहा, तो क्या तुम्हारी सलाह है कि मुचलका दें? कादिर, नहीं, मेरी सलाह नहीं है। मेरी सलाह है कि हम लोग अपने अपने बयान पर डटे रहें। अभी कौन जानता है कि मुचलका देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें पीठ न फेरनी चाहिए। भला सोचो कितना बड़ा अंधेर है कि हम लोग मुचलके के डर से अपने बयान बदल दें, अपने ही लड़के कुएं में धकेल दें। मनोहर ने कादिर मियाँ को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा, उसे ऐसा जान पड़ा मानो यह कोई देवता है। कादर की सम्मति जो साधारण न्याय पर स्थिर थी उसे अलौकिक प्रतीत हुई। डपट सिंह को भी यह सलाह संयुक्तिक ज्ञात हुई, मुचलकी की शंका कुछ कम हुई। मन में स्वार्थपरता पर लज्जित हुए, इस पर भी मन से यह विचार न निकाल सका कि प्रस्तुत विषय का सारा भार बल्लाज के सिर है। बोले, कादिर भाई, यह तो तुम नाहक कहते हो कि मैंने बल्लाज को इस तालुक किया। मैंने बल्लाज से कब कहा कि तुम लश्कर वालों से तूल कलाम करना? यह रार तो उसने आप ही बढ़ाए, उसका स्वभाव ही ऐसा कड़ा ठहरा। आज को सिपाहियों से उलझा है, कल को किसी पर हाथ ही चला दे तो हम लोग कहाँ तक उसकी हिमायत करते फिरेंगे? कादिर, मैं तो तुमसे कब कहता हूँ कि उसकी हिमायत करो, वह बुरी राह चलेगा तो आप ठोकर खाएगा। मेरा कहना यही है कि हम लोग अपनी आंखों की देखी और कानों की सुनी बातों में किसी के भय से उलट फेर न करें, सच्चाई पर रहें, अपनी जान बचाने के लिए फरेब न करें। मुश्किलें की बात ही क्या, हमारा धर्म है कि अगर सच कहने के लिए जेहल भी जाना पड़े तो सच से मुंह न मोड़े। नपट सिंह को अब निकलने का कोई रास्ता न रहा, किंतु फिर भी इन निश्चय को व्यवहारिक रूप से मानने का कोई संभावित मार्ग निकाल लाने की आशा बनी हुई थी। बोले, अच्छा मान लो हम और तुम अपने बयान पर अड़े रहे, लेकिन विशेषर और दुखहरण को क्या करोगे? वह किसी विधि न मानेंगे। कादिर, उनको भी खींच लाता हूँ, मानेंगे कैसे नहीं, अगर अल्लाह का डर है तो कभी निकल ही नहीं सकते। यह कहकर कादिर खां चले गए और थोड़ी देर में दोनों आदमियों को साथ लिए हुए आ पहुंचे। विशेषर साथ ने आते ही डपट सिंह की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से आंखें नचाकर देखा, मानो पूछना चाहते थे कि तुम्हारी क्या सलाह है। और दुखहरण भगत, जो दोनों जून मंदिर में पूजा करने जाया करते थे और जिन्हें रामचर्चा से कभी तृप्ति न होती थी, इस तरह सिर झुकाकर बैठ गए मानो उन पर वज्रपात हो गया है या कादिर खां उन्हें किसी गहरी खोह में गिरा रहे हैं। इन्हें यहाँ बैठकर कादिर खां ने अपनी पगड़ी से थोड़ी सी तम्बाकू निकाली, अलाव से आग रख लाए और दो तीन दम लगाकर चीलम को डपट सिंह की ओर बढ़ाते हुए बोले, कहो भगत, कल दरोगा जी के पास चलकर क्या करना होगा? दुखहरण, जो तुम लोग करोगे मैं भी वही करूँगा, हाँ मुचलका ना देना पड़े। कादिर ने फिर उसी युक्ति से काम लिया जो डपट सिंह को समाधान करने में सफल हुई थी। सीधे किसान वितंडातावादी नहीं होते, वास्तव में इन लोगों के ध्यान में यह बात ही नहीं आई थी कि बयान बदलना प्रत्यक्ष जाल है। कादिर खां ने इस विषय का निदर्शन किया तो उन लोगों की सरल सत्य भक्ति जागृत हो गई, शीघ्र ही उनसे सहमत हो गए, लेकिन विशेषर पर उनके भाषण का कुछ असर न हुआ। शाह जी के यहाँ शक्कर और अनाज का कारोबार होता था, टेवड़ी सवाई चलती थी, लेन देन करते थे, दोहल की खेती होती थी, गांजा भांग चरस आदि का ठेका भी ले लिया था, पर उनका भेष भाव उन्हें अधिक कराधिकारियों के पंजे से बचाता रहता था। बोले, भाई तुम लोगों का साथ देने में मैं कभी न रहूँगा, चार पैसे का लेन देन है, नरमी गर्मी डांट डपट किए बिना काम नहीं चल सकता। रुपए लेते समय तो लोग सगे बन जाते हैं, पर देने की बारी आती है तो कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। ये रोजगार ही ऐसा है कि अपने घर की जमा देकर दूसरों से बैर मोल लेना पड़ता है। आज मुचलका हो जाए, कल कोई मामला खड़ा हो जाए तो गांव में सफाई के गवाह न मिलेंगे और फिर संसार में रहकर अधर्म से कहाँ तक बचेंगे। या तो कपट लोग हैं, अपने मतलब के लिए दंगा फरेब जाल सभी कुछ करना पड़ता है। आज धर्म का विचार करने लगूं तो कल ही 100 रुपये साल का टिकट बच जाए, आसामियों से कौड़ी न वसूल हो और सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाए। इस जमाने में जो रोजगार रह गया है इसी बेईमानी का रोजगार है। क्या हम हुए क्या तुम हुए, सबका एक ही हाल है। सभी सन की गांठों में मिट्टी और लकड़ी भरते हैं, तिलहन और अनाज में मिट्टी और कंकर मिलाते हैं। क्या यह बेईमानी नहीं है? अनुचित बात कहता हूं तो मेरे मुख पर थप्पड़ मारो। तुम लोगों को जैसे गौ पड़े वैसा करो, पर मैं मुचलका देने पर किसी तरह राजी नहीं हो सकता। स्वार्थ नीति का जादू निर्बल आत्माओं पर खूब चलता है। दो खरन और दपट सिंह को यह बातें अतिशय न्याय संगत जान पड़े। यही विचार उनके हृदय में भी थे, पर किसी कारण से व्यक्त न हो सके थे। दोनों ने एक दूसरे को मार्मिक दृष्टि से देखा। दपट सिंह बोले, भाई बात तो सच्ची कहते हो, संसार में रहकर सीधी राह पर कोई नहीं चल सकता। अधर्म से बचना चाहे तो किसी जंगल पहाड़ में जाकर बैठो, यहाँ निवाह नहीं। कादिर खां समझ गए कि साहू जी पर धर्म और न्याय का कुछ बस न चलेगा। यह उस वक्त तक काबू में न आएंगे जब तक इन्हें यह न सूझेगा कि बयान बदलने में कौन कौन सी बाधाएं उपस्थित हो सकेंगी। बोले, साहू जी तुम जो बात कहते हो बेलाग कहते हो। संसार में रहकर अधर्म से कहाँ तक कोई बचेगा? रात दिन तो छल कपट करते रहते हैं। जहाँ इतने पापों का दंड भोगना है, एक पाप और सही। लेकिन यहाँ धर्म का ही विचार नहीं है ना? डर तो यह है कि बयान बदलकर हम लोग किसी संकट में न फंस जाए। पुलिस वाले किसी के नहीं होते। हम लोगों का पहला बयान दरोगा जी के पास रखा हुआ है, उस पर हमारे दस्तखत हैं और अंगूठे के निशान भी मौजूद हैं। दूसरा बयान लेकर वह हम लोगों को जालसाजी में गिरफ्तार कर ले तो सोचो कि क्या हो, 7 बरस से कम की सजा न होगी। न भैया, इससे तो मुचलका ही अच्छा, आंख से देखकर मक्खी क्यों निकली। विशेषज्ञ साहब की आंखें खुली और लोग भी चकराए। कादिर खां की यह युक्ति काम कर गई। लोग समझ गए कि हम लोग बुरे फंस गए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। विशेषज्ञ का मुंह ऐसा लटक गया मानो रुपए की थैली गिर गई हो। बोले, दरोगा जी ऐसे आदमी तो नहीं जान पड़ते, कितना ही है तो भी हमारे मालिक हैं, कुछ न कुछ मुलाहिजा ही तो करेंगे ही। लेकिन किसी के मन का हाल परमात्मा ही जान सकता है, कौन जाने उनके मन में कपट समा जाए, तब तो हमारा सत्यानाश ही हो जाए। तो यही सलाह पक्की कर लो कि न बयान बदलेंगे न दरोगा जी के पास जाएंगे। अब तो जाल में फंस गए हैं, फड़फड़ाने से फंदे और भी बंद हो जाएंगे। चुपचाप राम आश्रय बैठे रहना ही अच्छा है। इस प्रकार आपस में सलाह करके लोग अपने अपने घर गए। कादिर खां के व्यवहार पटुता ने विजय पाई। बाबू दयाशंकर नियमानुसार 8 बजे सोकर उठे और रात की खुमारी उतारने के बाद इन लोगों की राह देखने लगे। अब 9 बजे तक किसी की सूरत न दिखाई दी तो गौस खां से बोले, कहिए खां साहब, यह सब न आएंगे क्या, देर बहुत हुई। गौस खां, क्या जाने कल सबों में क्या मिसकाउट हुई। क्यों सुखू, रात मनोहर तुम्हारे पास आया था न? सुखू, हाँ आया तो था, पर कुछ मामले की बातचीत नहीं हुई। कादिर मियाँ बड़ी रात तक सबके घर घर घूमते रहे, उन्होंने सबों को मंत्र दिया होगा। गौस खां, जरूर उसी की शरारत है, कल पहर रात तक सब लोग बयान बदलने पर आमादा थे। मालूम होता है जब लोग यहाँ से गए हैं तो उसे पट्टी पढ़ाने का मौका मिल गया। मैं जानता तो सबों को नहीं सुलाता, यह मलऊन कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आता, हमेशा भाजी मारा करता है। दया, अच्छी बात है, तो मैं अब रिपोर्ट लिख डालता हूँ। मुझे गाँव वालों की तरफ से किसी किस्म की ज्यादती का सबूत नहीं मिलता। गौस खां, हुजूर खुदा के लिए ऐसी रिपोर्ट न लिखे, वरना सब और शेर हो जाएंगे। हुजूर महज अफसर नहीं है, मेरे आका भी तो हैं। गुलाम ने बहुत दिनों तक हुजूर का नमक खाया है, ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ मेरा रहना दुश्वार न हो जाए। मैं तो हुजूर और बाबू ज्ञान शंकर को ही एक ही समझता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि बल्लाज को कम से कम एक माह की सज़ा हो जाए और बाकी से मुचलका ले लिया जाए। यह इनायत खास तक पर होगी, मेरी धाक पद जाएगी और आइंदा से हुक्काम की बेगार में जरा भी दिक्कत न होगी।